ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् जं जस्य जम्मि देशे येन विहाणेन जम्मि कालम् मे नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मे कोसकदिवारे दुम् इन्दो वा सह जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौपज्जाये सो सत्तिष्ठि शुद्धो जो संकदि सोहुको दिति।
जिन आगम के आधार से हम कारण और कार्य का जो रहस्य है उसका जो मर्म है उसकी बात यहाँ देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा है कि हर द्रव्य के हर गुण में प्रति समय अपनी अपनी पर्याय स्वयं के अपनी योग्यता से स्वयं में ही होती है, फिर भी पर्याय जो है उसी को जो कार्य कहा है उसके दो कारण कहने में आते हैं। एक तो उसका जो यथार्थ कारण है जिसको द्रव्य की निज शक्ति कहते हैं उसको कहते हैं उपादान कारण, और दूसरा है उसी समय कोई जो अन्य द्रव्य अपना कार्य कर रहा है उस पर अनुकूल होने का आरोप आता है तो उसको हम कहेंगे ये निमित्त। तो ऐसे प्रत्येक कार्य में दो कारण है, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त की ओर से कार्य को क्या कहते हैं? नैमित्तिक। और उपादान की ओर से उपादेय। एक ही कार्य के दो नाम हैं। हमने तो अभी तक तो निमित्तों की बहुत परिभाषा भी देखे, उसके उदाहरण दृष्टांत भी देखे और उसके भेद प्रभेद भी देखे। अभी थोड़ी हमें उपादान कारणों की यहाँ चर्चा करनी है। प्रश्न ऐसा है, उपादान कारण से कार्य होता है तो जब तक निमित्त नहीं आया तब तक वो कार्य क्यों नहीं हुआ? जब कैलाशचंद जी बुलंदशहर वाले, उनसे हम पढ़े, हमसे तो 16-16 प्रश्न लिखवाते थे, घड़ा बना ये कार्य हुआ उस पर सभी घटित करो, निमित्त भी घटित करो, उपादान के तीनों भेद भी घटित करो, तो कहते थे मिट्टी तो पड़ी है अनादि से कार्य क्यों नहीं हुआ, ऐसा पूछते। हमको वो लिखना भी पड़ता था, रोटी बनी उस पर सब घटित करो, आटा तो पड़ा है जब तक बाई ने नहीं उसको रोटी बनाई क्यों नहीं बना, तो उसके हमें उत्तर भी देने पड़ते थे, रोज लिखवा लेना पड़ता था कितने कितने प्रश्न। रात को दो दो बज जाते थे, दिन में तीन टाइम तो वो पढ़ाए, और बाकी हमारे अपनी घर गृहस्थी, हमारी क्लिनिक, हमारा बच्चों का सब देखना, ये सब टाइम कहाँ मिले? आप लोग कहते हैं हमको टाइम नहीं मिलता यहाँ आने के लिए, टाइम तो निकालना पड़ता है भाई। लोग कहते हैं हमको कुछ टाइम नहीं है स्वाध्याय के लिए। अब ये जो आपके हाथ में सम्यक ज्ञान चंद्रिका पुस्तक आई ना, गत वर्ष दी ना यहाँ पर, जब उसके अनुवाद चलता था तो 3 बजे उठकर मैं करती थी। दिन भर तो हमारा सामूहिक स्वाध्याय 3.5 घंटा तो इतरों के लिए चलता है, अन्य के लिए, हमारा अपना अलग, घर गृहस्थी अलग, तो हम समय निकाले अपने स्वयं के लिए तो निकल सकता है, अगर नहीं निकालना चाहते नहीं निकल सकता। तो जब भी हमें कैलाशचंद जी 1976 की बात है तो तभी हमें रात को 2-2 बज तक वो 12:30 बजे तक लिखकर फिर उनको दिखाते थे दूसरे दिन, और उनके तो कितने कड़क थे, आपने उनके कुछ मिसाल सुने होंगे, हैं सुने ना। हम स्वयं रुचिपूर्वक कुछ ग्रहण करना चाहते हैं देखो आज तक तो बहुत आसानी हो गई है, सब शिविर वगैरह होते तो बहुत जिसको कहते हैं ना सुख सुविधाएं होती है। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, कोई वहां अनुकूलताएं नहीं होती थी, फिर भी हमें कुछ हासिल करना है तो कैसे भी प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, तो हमें तो मुख्य रूप से जो हमें जिनागम का मर्म समझना है वो समझना चाहिए। तो वे हमें ऐसा पढ़ाया करते थे। तो ये त्रिकाली उपादान तो अनादि से पड़ा है, क्यों? द्रव्य और गुण तो अनादि से है, तो उसमें कार्य क्यों नहीं हुआ जब तक निमित्त नहीं आया? बात तो हमें भी ऐसी लगती है, हमें भी ऐसा ही भासित होता है, जब तक निमित्त नहीं आया था तो वो कार्य उस द्रव्य में नहीं हुआ था। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ था, तो ऐसा क्या है द्रव्य में कि उसी समय कार्य होने के उसकी जो कोई प्रक्रिया होती है वो बनती है, उसको हम देखेंगे। पहले ये जो उपादान कारण है उसके भी भेद है, उसको देखते हैं। एक है त्रिकाली उपादान जो अनादि अनंत विद्यमान है, और दूसरा है क्षणिक उपादान, उसी क्षण में विद्यमान है जिस समय वो पर्याय होनी है। क्या कहा? त्रिकाली उपादान कब से है? अनादि से है। हम जब कहते हैं कोई विशिष्ट द्रव्य में, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, उसी पर्टिकुलर द्रव्य में जो पर्याय हो रही है उसका कारण वही द्रव्य है, तो द्रव्य में उस पर्याय रूप परिणमने की शक्ति अनादि से ही विद्यमान है। सम्यक दर्शन रूप परिणमन करने की शक्ति जीव द्रव्य में, अभी जो कोई भव्य है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, उसमें उस पर्याय रूप परिणमने की शक्ति है, योग्यता रूप धर्म है, विशिष्ट समय में ही वो उस पर रूप परिणमित होगा। उसकी बात तो हम क्षणिक में करेंगे, हम तो केवल इतनी ही बात देख रहे हैं कि उस द्रव्य में उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता शक्ति पड़ी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिकाली उपादान। यहां द्रव्य को या उस गुण को हम क्या कहेंगे? त्रिकाली उपादान। प्रश्न तो यही है ना, त्रिकाली उपादान से कार्य क्यों नहीं हो रहा, तो उसका समर्थ उपादान कारण नहीं है। क्या कहा? समर्थ, वो नियामक कारण नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं उस द्रव्य में तो होगा परंतु कब होगा, उसके उस द्रव्य के चाहने से होगा कि कोई दूसरे के चाहने से होगा कि निमित्त के आने से होगा, तो कहते नहीं, द्रव्य में ही ऐसी शक्ति है। कौन सा? उसको कहेंगे क्षणिक उपादान। क्षणिक का अर्थ क्या है? उस एक समय के लिए वो उपादान है कि जिस समय में कार्य होता है। तो क्षणिक उपादान के भी यहां दो भेद लिखे हैं। क्या लिखे दिखाई दे रहे हैं? हाँ देखो, लंबा चौड़ा नाम है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। दूसरा भी नाम लिखा है, उसकी बाद में करूंगी मैं। क्या कहा? अनंतर, अनंतर ने इमीडिएट, बीच में अंतर छूटे बिना, उसको कहेंगे अनंतर। अनंतर के बाद क्या लिखा है? पूर्व। पूर्व ने जो जिस पर्याय की हम बात करें, मान लेते हैं हम 110वीं पर्याय की बात कर रहे हैं, तो पूर्व का अर्थ क्या? 109 नंबर। अनंतर पूर्व ने इमीडिएट प्रायर अंग्रेजी में कहना है, तो जिस पर्याय की बात कर रहे हैं उसके एक समय पूर्व की पर्याय, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय यानी एक समय वाली पर्याय, उसका व्यय। हम 110 नंबर की पर्याय की बात कर रहे हैं, तो उसके पूर्व की पर्याय कौन सी होगी? 109। उसका व्यय कब होगा? 109 नंबर पर होगा कि 110 नंबर पर होगा? 110 नंबर पर। 109 पर तो वो उत्पाद रूप थी, 109 नंबर की पर्याय अपने समय पर उत्पाद रूप थी। जब 110 की पर्याय उत्पन्न हुई उसी समय 109 का व्यय हुआ। इसका अर्थ क्या है? 110 नंबर की जो पर्याय उत्पन्न हुई है, कब उत्पन्न हुई? जिस समय 109 नंबर की पर्याय का व्यय हुआ है, यानी वो कभी 107 के व्यय पूर्वक नहीं होगी। 106 नंबर के व्यय होगा उस समय वो 110 नहीं होगी। कब होगी? जब 109 वाली ही पर्याय का व्यय होगा तभी ये 110 की उत्पन्न होगी। इसलिए क्या कहा? क्षणिक उपादान कारण में किसको लिया? उसके इमीडिएट यानी अनंतर पूर्व जो उसकी पर्याय थी, उसका व्यय जिस समय हुआ उसी समय ये हम जिस पर्याय की बात कर रहे हैं उस पर्याय का उत्पाद हुआ। इसका अर्थ है पूर्व पर्याय भी निश्चित है कि नहीं है, क्योंकि विवक्षित पूर्व पर्याय के व्यय पूर्वक ही ये पर्याय उत्पन्न होने वाली है। इसलिए क्षणिक उपादान में किसको लिया कि जिस समय विवक्षित पूर्व पर्याय का व्यय होगा उसी समय हम जो चाहते हैं वो पर्याय उत्पन्न होगी। परंतु यहाँ तो दो नाम लिखे हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य, ऐसा किसने कहा है? तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ऐसा कहा। वहां पूर्व पर्याय के व्यय को कारण नहीं कहा, क्यों? क्योंकि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, जो स्वयं नष्ट हो जाए वो दूसरे को उत्पन्न करे, ये बात कहां से आई? तो पर्याय कहां से उत्पन्न होती है? तो द्रव्य में से। तो द्रव्य तो अनादि से है? नहीं, किसी भी द्रव्य में से नहीं। कौन से द्रव्य में से? जो द्रव्य 109 नंबर की पर्याय से युक्त है, अभी वही द्रव्य नेक्स्ट समय में, उसके अनंतर समय में, अभी वहां क्या पोजीशन है उसकी? वो जो पूर्व पर्याय जो है ना, पूर्व पर्याय को कारण नहीं कहना है, पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य को कारण कह रहे हैं। समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? पहले तो हमने कहा पूर्व पर्याय का व्यय कारण है और उत्तर पर्याय का उत्पाद वो कार्य है। अब क्या रहे कह रहे? पूर्व पर्याय से युक्त जो द्रव्य है वो कारण है। जैसे हमारा घड़े का दृष्टांत देखते हैं, घट बना, उसकी पूर्व पर्याय क्या थी? तो पहले तो पिंड था, फिर उसको स्थास कुश वगैरह नाम देते ना, जो कुछ हम देंगे, हम मान लेते पहले मिट्टी का पिंड था और अभी उसका घट बन गया। तो जो पिंड रूप पर्याय थी, तो कौन सी माटी उसका कारण है, कौन सी मिट्टी लेना है? तो वो पिंड पर्याय रूप से परिणत जो मिट्टी है वो कारण है। हमने तो पहले त्रिकाली उपादान में मिट्टी को कारण कहा, अब कौन सी मिट्टी कारण है? जो पिंड रूप अवस्था में विद्यमान है वह मिट्टी कारण है और जो घट बना वह कार्य है। यानी ऐसा द्रव्य कारण रूप से लिया है जो पहले पूर्व पर्याय से सहित है। करण लब्धि युक्त जो मिथ्या दृष्टि है अंतिम समय वाला, वो जीव स्वयं कारण है और सम्यक्त की पर्याय उत्पन्न हुई वो कार्य है, वो उसका क्षणिक उपादान कहेंगे हम। दो प्रकार से उसका वर्णन आता है, पूर्व पर्याय का व्यय रूप कारण उसको कहेंगे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय यह है कारण। समय एक है, हो हम 110 नंबर की बात कर रहे हैं, समय कौन सा है? 110 नंबर का। उसी समय पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है, तो केवल व्यय यही कारण है? नहीं, वहां दूसरा भी नाम लिखा है। क्या लिखा है? तत् समय की पर्याय की योग्यता। हम जिस 110 नंबर की पर्याय की बात कर रहे हैं, उस पर्याय में ऐसी योग्यता है कि वह अपने उसी 110 नंबर के समय पर उत्पन्न हो। यह योग्यता कहां पड़ी थी? अभी तो पर्याय नहीं थी ना, जब 109 नंबर की पर्याय चल रही थी तो योग्यता तो पर्याय में पड़ी है? नहीं, वो योग्यता द्रव्य में पड़ी है। 110 समय पर 110 नंबर की पर्याय उत्पन्न हो ऐसी योग्यता रूप धर्म उस द्रव्य में पड़ा है। कब से पड़ा है? अनादि से पड़ा है। अनादि से ही उस द्रव्य में ऐसी योग्यता रूप धर्म पड़ा है, वो कहते थे हम उसको पर्याय की योग्यता, परंतु ये पर्याय की योग्यता पर्याय में, पर्याय थी कहां? तो वो योग्यता रूप वो धर्म का अंग है, ये द्रव्य का अंग है, वो द्रव्य में पड़ी है योग्यता। तो द्रव्य में अपने अनादि से लेकर अनंत काल तक की सभी पर्यायों की योग्यता रूप उसमें पड़ी है। तो प्रत्येक द्रव्य निश्चित समय में निश्चित पर्याय रूप से परिणमित हो ऐसे योग्यता रूप धर्म उसमें पड़े हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई पुरुषार्थ से उसका वो धर्म, योग्यता वाला धर्म बदल सके कि नहीं सके? बोलो। जीव पुरुषार्थ करे और वो द्रव्य में जो योग्यता रूप धर्म पड़े हैं उसको जरा जल्दी लावे ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक समय में निश्चित पर्याय रूप से परिणम होने की योग्यता उस द्रव्य में ही पड़ी है, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। इसको कहेंगे तत् समय की पर्याय की योग्यता। जिसको हम कहते हैं क्षणिक उपादान कारण। क्षणिक उपादान कारण में उसी समय 110 नंबर की समय में दो बातें हैं, पूर्व पर्याय का व्यय एक कारण, और उसी यानी 110 नंबर की पर्याय उत्पन्न हो ऐसी योग्यता जो द्रव्य में उसी समय पड़ी है, वो दोनों मिलकर वो हम कहेंगे क्षणिक उपादान कारण। वो उसी समय में विद्यमान है और एक क्षणिक उपादान कारण को ही हम समर्थ उपादान कारण कहते हैं। समर्थ क्यों? क्योंकि वो कार्य का नियामक है। पर्याय किस समय उत्पन्न हो इसका नियामक कारण कौन है? ये कौन गवर्न करता है, कौन डिसाइड करता है, कौन निश्चित करता है? हमें तो उसी समय जो निमित्त था उस वो तो ख्याल में आ गई बात। निमित्त तो हमें वहां उपस्थित दिखा, किस समय? जिस समय कार्य होना है। परंतु उसी समय जो पूर्व पर्याय का वैरूप भी कारण है, उसी समय वो उस समय के पर्याय की योग्यता रूप कारण भी विद्यमान है, वो दो ही कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो अव्यक्त है, वो द्रव्य में पड़े हैं, और हमें दिखाई क्या देता है? उसी समय वो निमित्त हमें दिखाई दिया तो हमने क्या मान लिया? ये निमित्त आया तभी उसका वो कार्य हुआ, क्योंकि द्रव्य तो पड़ा था। गणधर आए तो महावीर की वाणी छूटी, आज ही के दिन छूटी ना। कौन सा दिन था वो? श्रावण वदी एक। यह मराठी लोग कितने हैं? ये श्रावण वदी और आषाढ़ वदी का घोटाला समझता है क्या? नहीं समझते। आपके कैलेंडर में क्या है आज? महाराष्ट्र में, गुजरात में आज के कैलेंडर में क्या लिखा है? आषाढ़ वदी एक। और हिंदी प्रांत वाले श्रावण वदी एक। ऐसा क्यों? ये मालूम है आपको घोटाला कि नहीं मालूम? हमने नया आपको बता दिया घोटाला। अच्छा, ये ऐसा क्यों? एक महीने का डिफरेंस शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में तो दोनों, आप भी महाराष्ट्र में है ना, शुक्ल पक्ष में तो दोनों का समान था। अभी तक तो हम सभी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदाओं से अभी हम पूर्णिमा तक तो बरोबर साथ साथ चल रहे थे। फिर क्या हुआ? हिंदी लोगों का आज श्रावण वदी एकम चालू हो गई, और मराठी और गुजराती लोगों की आज आषाढ़ वदी एकम चालू है। एक महीने का डिफरेंस, एकदम गैप। क्यों? क्योंकि आप जो पूर्णिमासी कहते हैं ना, पूर्णिमा पूर्णमासी कहते हैं, महीना वहां पूर्ण होता है, और हमारे यहां पूर्णिमा को आधा महीना कहते हैं। पहले शुक्ल पक्ष, फिर बाद में वद्य पक्ष, और यहां हिंदी में पहले कौन सा? वद्य पक्ष, और बाद में शुक्ल पक्ष, ऐसा गिनते। तो गिनने में अंतर है। हम ऐसा नहीं, हम वहां जो है आज ही के दिन महावीर की वाणी छूटी है, पर हम उसको आषाढ़ वदी एकम कहते हैं, और यहां श्रावण वदी एकम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए बताया, घोटाला करने के लिए नहीं। ये दिवाली में भी ऐसा होता है ना, वहां आप कौन सी अमावस्या कहते हैं? कार्तिक है? कार्तिक अमावस्या। और हम क्या कहेंगे? हमारा एक महीना पहले वाला कहेंगे, आश्विन की बात करेंगे हम। ये ऐसी है नहीं गणना की पद्धति, ये दो अलग अलग है, ये हमारे ख्याल में आनी बात चाहिए। हाँ, नहीं तो हम वहां का कैलेंडर देखेंगे, यहाँ का कैलेंडर देखेंगे, उल्टा पुल्टा लगेगा हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे हम। हमने अभी तक देखे कार्य का नियामक कारण कौन है, समर्थ उपादान कारण कौन है। तो उपादान कारण के दो भेद है, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो क्षणिक उपादान में कितने भेद देखे हमने? कौन कौन से? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय रूप कारण, या उसी को दूसरी पद्धति भी कहीं में आती है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य कारण। और दूसरा क्षणिक उपादान कौन सा है? तत्समय की पर्याय की योग्यता। ये लंबा चौड़ा नाम कभी कभी नहीं देते, तत्समय की योग्यता कह देते हैं। वो कुछ समय की योग्यता नहीं है, काल की योग्यता नहीं है, उस समय की पर्याय की योग्यता है, या उस समय उस पर्याय रूप परिणमने की द्रव्य की योग्यता है। देखो, हम जब तत्समय की बात करते हैं तो भगवान ने देखा है, क्या देखा है? कि 9 बजे समय दर्शन होने वाला है, इस काल में, इस महीने में ये 9 बजे अमुक दिन इसको सम्यक तो होगा। तो चलो अभी टाइम है ना, 1 घंटा एक टीवी सीरियल देख लेते हैं। क्यों हम ऐसा ही समझते हैं, जिस समय होने वाला है ना हम उस काल को देखते हैं, दूसरे काल को, व्यवहार काल को। ये बात नहीं है। जब हम काल कहते हैं, द्रव्य का काल कहते हैं, तो द्रव्य की जो पर्यायों की जो श्रृंखला है, द्रव्य का जो अनादि अनंत पर्यायों का जो सिलसिला है, जो क्रम है पूरा है, उसको द्रव्य का काल कहेंगे। उसकी जो अवस्थाएं, उसका जो परिणमन है, उसको द्रव्य का काल कहने में आता है। तो पर्याय अपने निश्चित स्व समय में उत्पन्न होती है, यानी उसका जो क्रम है वो निश्चित है। अभी हमने देखा ना, पूर्व पर्याय का वे ये कारण जब कहते हैं तो पूर्व पर्याय भी निश्चित है। वो पूर्व पर्याय कैसी हुई? उसके निश्चित पूर्व पर्याय के वे से हुई। उसके पूर्व वो भी निश्चित थी, उसका व्यय हुआ। उसके पूर्व वो भी निश्चित थी, उसका व्यय हुआ। तो ये पर्यायों की जो सिलसिला चल रहा है, निश्चित पर्यायों के व्यय पूर्वक निश्चित पर्याय उत्पन्न होगी। तो इसको क्या कहते हैं? विधि, प्रोसेस, प्रक्रिया जो कुछ है वो भी निश्चित होती है। विवक्षित कोई विशिष्ट कार्य होता है, निश्चित कार्य होता है, तो उसके पूर्व पर्याय भी उसी अनुसार वहां होती रहती है। हम देखते हैं ना, प्रथमोपशम सम्यक तो होता है। कैसे होता है? तो उसके पहले क्या होता है? करण लब्धि होती। उसमें भी अनिवृत्ति करण, उसके पहले अपूर्व करण, उसके पहले अधप्रवृत्त करण, उसके पहले प्रायज्ञ लब्धि, उसके पहले देशना लब्धि, ये विशुद्धि लब्धि, क्षोपशम लब्धि। तो ये सारा जो क्रम है, कोई भी पर्याय ले लो, तो उसके पर्यायों का क्रम भी निश्चित है, पूर्व पर्यायों का। वो पर्याय भी निश्चित है, उसका समय भी निश्चित है। इतना ही नहीं, उसका निमित्त भी निश्चित है। ये तो व्यवहार की भाषा है, किसी का उपकार स्मरण करने की भाषा है। यदि आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? कहते हैं हम गुरुदेव के लिए भी ऐसे वचन बोलते हैं, यदि गुरुदेव इस काल में नहीं जन्म लेते और इतना सारा खुलासा नहीं करते, क्योंकि हम तो मूल दिगंबर में जन्मे और हमें अपने ही शास्त्र पता नहीं, और किसी बाहरी व्यक्ति ने आके हमको समझाया। महावीर के काल में तो यही बात चल रही है। यहां तो मूल मुनिराज यहां विद्यमान थे, कोई बाहर का आया इंद्रभूति गौतम और उसने समझाया। कितने ऐसे मुनिराज हो गए हैं, वो अन्य पंथ में से आए, श्वेतांबर में से आए, और उन्होंने दिगंबरी शास्त्र पढ़े, अपना भी कल्याण किया और दूसरों का भी कर दिया। बनारसीदास कौन थे? वो भी श्वेतांबर थे। श्रीमद जी, कांजी स्वामी, अमरचंद्र के बारे में भी ऐसा सुना है मैंने। तो ये सारे देखो, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो कौन से पंथ में कहां जन्मा, इससे कुछ मतलब नहीं है। जिस समय वो सही अभ्यास करके, जिनागम का अभ्यास करके और तत्व निर्णय तक पहुंचकर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो उसका कल्याण ही कल्याण है। वो कौन से पथ में कहां जन्मा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। यदि उसकी वही मान्यता चालू रहती है, तो उसको सम्यक दर्शन का कोई मौका नहीं है। यही तो है ना, बाकी तो ऐसा ही नहीं, जो जन्म से उसी को मानते रहते, ऐसी बात है ही नहीं है। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहां हम पढ़ेंगे थोड़ा कुछ। देखो ये सारे जो भेद यहां भी लिखे हैं, पृष्ठ संख्या 86 पर से है। नीचे से जो बड़ा पैराग्राफ है, उपादान 2 प्रकार के हैं। ये जो अभी हमने नाम लिखे बोर्ड पर, वे ही यहां फिर हम पढ़ेंगे उसी के बारे में। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, जो द्रव्य अथवा गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकाली उपादान कहते हैं। गुण स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमित होता है, या द्रव्य की बात करनी है तो द्रव्य स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमित होता है। कल भी हमने देखा ना, अमृत चंद्राचार्य ने कहा है, यह परिणमित सहकर्ता, जो स्वयं उस रूप परिणमित होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। विशिष्ट पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति उस द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान रहती है। जो पर्याय रूप, निश्चित पर्याय रूप परिणमने की शक्ति कब से है उस द्रव्य में? अनादि से है। हमारी जो केवल ज्ञान रूप विशिष्ट पर्याय परिणमित होगी, उसका समय किस में है? वो उसमें जो उसकी जो शक्ति है वो किस में है, हमारे ही द्रव्य में विद्यमान है। निश्चित समय पर हम स्वयं केवल ज्ञान रूप पर्याय रूप से परिणमित होने वाले हैं, वो हमारी निज शक्ति है। और उस पर्याय रूप परिणमने का धर्म, उसकी योग्यता हमारे द्रव्य में त्रिकाल पड़ी, अनादि से है वो। अनादि से तो थोड़ी जल्दी लावे ना, नहीं, वो अपने निश्चित समय पर ही निश्चित पर्याय रूप से परिणमित होगा, ऐसा ही द्रव्य का वो धर्म है। उसी के साथ साथ क्षणिक उपादान कारण भी विद्यमान रहता है। ये शक्ति तो है द्रव्य में, परंतु वो निश्चित समय में परिणमित होगा, ऐसी शक्ति है। केवल शक्ति है ऐसा नहीं कहा, हम केवल ज्ञान रूप परिणमने वाले हैं, ऐसी शक्ति हमारे द्रव्य में है। इतना ही नहीं, उसका समय भी निश्चित है, कौन से विशिष्ट समय में हम परिणमित होने वाले हैं, यह भी योग्यता हमारे द्रव्य में विद्यमान है। तो उसको क्या कहेंगे, क्षणिक उपादान, जिससे यह निश्चित होता है कि कार्य कब होगा, कौन सा होगा, इसी को कार्य का नियामक कहते हैं। क्षणिक अर्थात क्षणवर्ती, एक समय के लिए जो है, इसके भी दो भेद है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और उस समय की पर्याय की योग्यता। जब कार्य होता है उस समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है और कार्य यानी विवक्षित पर्याय उत्पन्न होती है। मान लो 101, 102, 103 ऐसे करते करते 109, 110 नंबर की पर्याय हो रही है, तो 110वीं पर्याय को हम विशिष्ट कार्य मानते हैं। ये हमने उदाहरण लिया है, दृष्टांत लिया है, क्योंकि हम कैसे समझाएं, अनादि है तो उसको 1, 2, 3, 4 नंबर देना भी ठीक नहीं है, इसलिए हमने बीच में कोई भी नंबर ले लिए। उसमें त्रिकाली उपादान तो उस द्रव्य का वह गुण है, और क्षणिक उपादान दो प्रकार के हैं। अभी 110 के लिए अनंतर पूर्व पर्याय कौन सी हुई, 109 नंबर की। तो क्या कहते, देखो 109वीं पर्याय का व्यय कारण और 110वीं पर्याय का उत्पाद कार्य, इसी को अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप क्षणिक उपादान कारण कहा है। परंतु पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि पर्याय एक समय में है, जो स्वयं नष्ट हो गई है उसमें से नई पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती है। जो स्वयं व्यय रूप हो गई है उस अभाव में से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। पर्याय तो द्रव्य में से उत्पन्न होती है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा है कि अनंतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण है और अनंतर उत्तर परिणाम से युक्त वही द्रव्य कार्य है। क्या कहते हैं, कारण कार्य किस पर घटित किया, द्रव्य पर। 109 नंबर की पर्याय से युक्त द्रव्य कारण है और 110 नंबर की पर्याय युक्त द्रव्य कार्य है। दोनों जगह पर्याय से युक्त द्रव्य को ले लिया उन्होंने। देखो भाई, आचार्यों की अपेक्षा अलग अलग जगह अलग अलग होती है और उसका कथन सही रूप से समझना भी हमारा कार्य है। दो नंबर यहां लिखा है ना, कार्य हुआ वह उस विशिष्ट पर्याय की स्वयं की योग्यता से हुआ, उसे तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण कहते हैं। यानी ये जो प्रक्रिया ना, उसके पूर्व समय की पर्याय भी निश्चित है, उसके भी पूर्व, उसके भी पूर्व, उसके भी पूर्व, इसको क्या कहेंगे, विधि, प्रक्रिया। निश्चित पर्यायों के क्रम से ही विशिष्ट कार्य उत्पन्न होता है, फिर भी उस प्रत्येक समय में अपना अपना अलग अलग कार्य है, परंतु सबको मिलकर हम कोई कार्य का नाम देना चाहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ, केवल ज्ञान रूपी कार्य हुआ, तो उसके पूर्व पर्यायों का निश्चित व्यवस्थित क्रम वहां रहता ही है। नीचे का एकदम पैराग्राफ डायरेक्ट, 110वीं पर्याय विवक्षित समय में उत्पन्न हुई, यानी निश्चित समय में उत्पन्न हुई। इतना ही नहीं, अपितु विवक्षित विधिपूर्वक हुई है, उसके पूर्व की पर्यायों की अखंड मालिका उसमें कारण है। सम्यक दर्शन विवक्षित समय में उत्पन्न होता है, परंतु उसके पूर्व में परिणामों की यानी पर्यायों की निश्चित मालिका होती है। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, उसके पूर्व बढ़ते हुए विशुद्ध परिणामों को करण लब्धि या करण परिणाम कहते हैं, और करण लब्ध पूर्वक ही सम्यक तो होता है। ये भी अभी हमने बात देखी थी। ये पंचलब्धि पूर्वक ही कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देखो ये नीचे का पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, क्षणिक उपादान कारण में दोनों कारणों का समावेश है। जब हम क्षणिक कहते हैं तो ये क्षणिक एक ही समय में है कि पूर्व और पश्चात दो समयों में है? क्या प्रश्न है? ये जो मैंने क्षणिक उपादान कारण आपको कहा अभी बताया, जो शास्त्र में लिखा है, वो 109 और 102 दोनों मिलकर बात है कि अकेले 110वें नंबर पर विद्यमान है? 110 नंबर पर है, क्योंकि पूर्व पर्याय का व्यय 110 नंबर पर हुआ है और उस समय की योग्यता भी 110 नंबर पर है। तो उसी समय में, जिस समय में पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसी समय ये दोनों ही कारण विद्यमान है। ख्याल में आती बात कि नहीं समझे? 109 का उत्पाद 109 पर था, 109 का व्यय कब हुआ? 110 पर, और 110 का उत्पाद कब हुआ? 110 पर। तो दोनों ही 110 पर विद्यमान है। देखो, क्षणिक उपादान कारण में दोनों कारणों का समावेश है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और उस समय वह पर्याय उत्पन्न होने की योग्यता, ये तो कारण है। और कार्य क्या हुआ है? हमारी 110 नंबर कहो ना उसको, 110 नंबर की पर्याय हुई, ये क्या हुआ? कार्य। और 110 नंबर की पर्याय उत्पन्न होने की योग्यता, ये कारण है। हमने योग्यता को कारण कहा और पर्याय को कार्य कहा। दोनों में ख्याल हो आता है क्या अंतर है? फिर से ध्यान देना, यहां योग्यता को कारण और पर्याय को कार्य कहा जा रहा है। प्रत्येक पर्याय में अपने विवक्षित समय में उत्पन्न होने की योग्यता होती है। देखो यहां पर्याय की भी स्वतंत्रता बताई है। ये तो धर्म द्रव्य में विद्यमान है ही। कौन सा धर्म? विवक्षित समय में, निश्चित समय में, निश्चित पर्याय रूप से परिणमने का धर्म, ये क्षणिक योग्यता उस द्रव्य में तो विद्यमान है ही है। जब हम पर्यायों की स्वतंत्रता निश्चित करना चाहते हैं तो पर्याय अपने स्वयं के जन्म क्षण पर उत्पन्न होती है, ऐसा कहेंगे। कहां लिखा है जन्म क्षण की बात? हमने देखी थी, हाँ, प्रवचन सार में लिखी है। हाँ, प्रत्येक पर्याय में अपने विवक्षित समय में उत्पन्न होने की योग्यता होती है, उसे किसी ने निर्माण नहीं किया या बाह्य परिस्थिति के अनुसार वह योग्यता बदलती नहीं। क्या कहना चाहते? अरे कोई अन्य निमित्त आता तो योग्यता बदलती कि नहीं बदलती? हाँ, नहीं बदलती, क्योंकि योग्यता हम उसी को कहें ना, जिस रूप परिणमने की योग्यता पड़ी है कब से, वो तो अनादि से वो द्रव्य में पड़ी है। वो योग्यता कोई भी बदल नहीं सकता, वो द्रव्य स्वयं भी बदल नहीं सकता उसको। हम भी स्वयं जीव द्रव्य है और हम चाहते हैं, चाहते हो क्या चाहते हैं? अपना केवल ज्ञान जरा जल्दी आ जाए, तो चाहने से आएगा कि नहीं आएगा? अरे हमारे जो योग्यता रूप धर्म पड़ा है, निश्चित समय में निश्चित रूप से परिणमने की योग्यता हमारे में है, वो कोई नहीं बदल सकता, कोई नजदीक ला नहीं सकता और कोई उसको टाल नहीं सकता है। लोगों को लगता है हम पराधीन हो गए, ये पराधीनता नहीं, ये तो अनंत स्वतंत्रता है, द्रव्य की और पर्याय की अनंत स्वतंत्रता है और बिल्कुल निराकुलता का कारण है। यदि हमें उसको सही रूप से उसका निर्णय हो जाए तो जीव अत्यंत निराकुल हो जाता है। देखो, प्रत्येक द्रव्य में जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह है, उसमें प्रत्येक पर्याय अपने स्वसमय में स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है। तो हमें क्या करना है? दूसरों की पर्याय लाने के लिए हमें क्या करना है? हाँ, कुछ ला सकते, बदल सकते, टाल सकते? नहीं। और अपनी लाने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? प्रयत्न तो करना है कि नहीं भाई? हाँ, वो तो स्वयं में होगा, जिस पर्याय रूप से जैसी योग्यता है। तो हम स्वयं जीव द्रव्य है, हमारे में भी अनादि अनंत जो कोई प्रवाह है पर्यायों का, वो निश्चित है और यथा समय अपने अपने निश्चित समय पर निश्चित पर्याय होने वाले ही है। हम कहते निमित्त नहीं मिला तो? अरे कैसे नहीं मिलता, हमारी योग्यता और निमित्त नहीं आवे ये बात तीन काल में नहीं हो सकती। निमित्त से नहीं होता ये बात गारंटी से है, फिर भी उचित निमित्त वहां होता ही है। उसी को यहां जन्मक्षण कहा है प्रवचन सार में। देखो, इसीलिए क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कहते हैं। त्रिकाली उपादान तो सदा ही विद्यमान रहता है, अनादि अनंत है उसका, तो त्रिकाली कहा ना उसका, उसे यदि समर्थ उपादान कारण मानेंगे तो विवक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होना चाहिए। क्या कहते हैं, यदि त्रिकाली उपादान को ही समर्थ यानी नियामक उपादान कहेंगे तो त्रिकाली उपादान है ना, और उसी से कार्य होता है, तो त्रिकाली उपादान कब से है, अनादि से, कब तक रहेगा, अनंत काल तक। तो उसी से अगर कार्य होना है तो कार्य भी अनादि से लेकर अनंत काल तक वही का वही कार्य हमेशा बना रहेगा, ऐसा तो नहीं होता। कार्य तो एक समय में होता है, निश्चित होना है वही होता है। तो कहते हैं इसलिए समर्थ उपादान कारण ही उसका सच्चा कारण है। उसके लिए हम इस तरह कह सकते हैं, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है वह समर्थ उपादान कारण है। क्या कहा, जिसके बिना नहीं होती और जिसके होने पर नियम से होती ही है, क्या कार्य की उत्पत्ति, उसको क्या कहेंगे, हाँ समर्थ उपादान कारण। किसको कहा, यहां पर बोर्ड पर लिखा है ना, किसको कहा, हाँ क्षणिक उपादान कारण को, और उसमें भी जो, और उसमें हम जिसको स्पेसिफिक कहते हैं तो तत्समय की पर्याय की योग्यता, यही सबसे समर्थ में समर्थ उपादान कारण है। समर्थ उपादान निश्चित ही कार्य का जनक है। समर्थ उपादान से वही कार्य होगा जिस कार्य का वह उपादान है। उस विवक्षित समय में जो निमित्त उपस्थित रहता है उसमें कार्य करने की शक्ति ही नहीं होती, परंतु उपादाना के अनुसार होने वाले कार्य का सूचक होने से उसे निमित्त कहते हैं। सूचक हो कहेंगे उसको, ज्ञापक कहेंगे, सहचर कहेंगे, जो वहाँ निमित्त अपने स्वयं के कारण वहाँ उपस्थित है। निमित्त की ओर देखकर हम कार्य का अनुमान कर सकते हैं, वो कार्य का उत्पादक नहीं है, वो कार्य का नियामक नहीं है। हमें तो ऐसा लगता ही है कि निमित्त नहीं आया तब तक कार्य नहीं हुआ, परंतु जिस समय समर्थ उपादान कारण विद्यमान है उसी समय वहाँ निमित्त स्वयं की अपनी योग्यता से सहज उपस्थित होता है। समय एक है, तो हमें ये जो समर्थ उपादान कारण है वो तो पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है, वो तो अव्यक्त है, द्रव्य में है, और यहाँ तो निमित्त कोई बाहरी चीज़ है तो बाहरी चीज़ दिखाई देती है, इसलिए क्या लगता है, ये निमित्त के कारण कार्य हुआ। ये हमारी भ्रमणा भी क्यों हो रही है, क्योंकि निमित्त उसी समय है जिस समय कार्य हो रहा है, परंतु कार्य जो हो रहा है वो अपने नियामक यानी जो कार्य है, जो समर्थ उपादान कारण है, क्षणिक उपादान कारण है, तत्समय की योग्यता रूप जो कारण है उसी कारण से कार्य हो रहा है, और हमें उस कारण का पता नहीं है, तो हम किसी बाह्य कारण को ही सच्चा कारण मान लेते हैं। कथन करने की बात अलग होती है और मानने की बात अलग होती है। निमित्त होता ही है फिर भी वो कार्य में कुछ नहीं करता, इस बात को हमें बिल्कुल निर्णय पूर्वक उसका स्वीकार होना ही चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि त्रिकाली उपादान कार्य का नियामक नहीं है, परंतु क्षणिक उपादान ही कार्य का नियामक कारण है। इसी नियामक कारण से विवक्षित कार्य निश्चित रूप से उत्पन्न होता है। ऐसा है तो फिर त्रिकाली उपादान कहने की जरूरत ही क्या है, आप एक ही कारण को ना इतने पहले निमित्त बताया, निमित्त से कार्य नहीं होता तो त्रिकाली उपादान कहा, फिर कहते त्रिकाली उपादान को नियामक नहीं है, नियामक कारण तो क्षणिक उपादान है, उसमें भी दो है, उसमें भी कौन सा है, निश्चित कारण तो तत्समय की योग्यता, तो एक ही बताओ ना, बड़े चार चार इतने क्यों बता रहे, ये प्रश्न है। उपादान निज शक्ति है, यह शक्ति दो प्रकार की है, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति। द्रव्य शक्ति बताती है कि यह कार्य कौन से विवक्षित द्रव्य में होगा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख आदि गुणों की पर्याय यानी कार्य जीव द्रव्य में ही होती है, अन्य द्रव्य में नहीं। इसलिए इन कार्यों का त्रिकाली उपादान जीव द्रव्य है, इसी को द्रव्य शक्ति कहते हैं। क्योंकि ये जो कार्य है वो हमारे में अपने में होने वाला है, अपनी स्वयं की योग्यता से होगा। पर्याय शक्ति बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में होगा, यह काल की नियामक है। और उसके हमने जो दो भेद हैं उसको अभी अभी देख ही लिए थे। तो त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान दोनों को एक साथ बताना है तो क्या कहेंगे? पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, क्योंकि उसकी अपनी अपनी पर्याय शक्ति निश्चित है। उससे युक्त जो द्रव्य शक्ति है वही सच्चा नियामक कारण उसको कहेंगे हम। अब आगे देखते हैं 90 पृष्ठ पर, यहाँ चौथे लाइन में लिखा है, कोई मानेगा कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त की आवश्यकता ही नहीं है, तो वह गलत है। ये हमारे आवश्यकता के कारण वो नहीं आता, वो कार्य में कुछ नहीं कर रहा है फिर भी उसकी उपस्थिति वहाँ उसके स्वयं के कारण पाई जाती है। जब जब विशिष्ट कार्य होते समय विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति पाई जाती है, तब तब उस कार्य में अनुकूल निमित्त मिलते ही है, ऐसा नियम है। ऐसा कभी नहीं होता कि निश्चय उपादान तैयार हो और निमित्त ही न मिले। यहाँ जीव की तैयारी है कौन सी? देशना लब्धि की, और सामने देशना देने वाला कोई न मिले, ये तीन काल में नहीं हो सकता। यहाँ सम्यक तो होने की योग्यता आई है और वो कर्म इधर उधर नहीं जाए, उपशम नहीं होए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीव तत्व विचार में तद्रूप होकर परिणमता है तो वहाँ स्वयमेव कर्मों में ऐसी अवस्थाएं बदलती हैं और उसको समय दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देखो ये एक पैराग्राफ तो हमने देखा था नीचे का, कार्य उपादान से होता है तब निमित्त की सहज उपस्थिति होती है, निमित्तों को ढूंढना नहीं पड़ता, निमित्त कैसे और कहां से मिलेगा इस चिंता से व्यग्र होने की जरूरत नहीं है। निमित्तानुसार कार्य नहीं होता, परंतु कार्य होता है उसके अनुसार निमित्त संज्ञा दी जाती है। कोई पहले से निमित्त निश्चित नहीं किया जाता है, जो कार्य होता है उसमें जो अनुकूल जो आरोप जिस पर आ सकता है उसको हम निमित्त कहते हैं। यानी कार्य के अनुसार हम निमित्त नाम दिया जाता है किसी अन्य जीव के या अन्य द्रव्य के पर्याय को, तभी हम निमित्त कह सकते हैं। जैसा कार्य होगा उसको वैसा हम निमित्त कहेंगे। कार्य एक समय का होता है और उसमें निमित्त रूप होती है परद्रव्य की पर्याय जो स्वयं एक समय की होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की विशिष्ट पर्यायों में होता है और वह भी एक समय मात्र का होता है। क्योंकि कार्य एक समय का है तो उसका निमित्त भी वहाँ एक समय के लिए है, दूसरे समय में दूसरा कार्य है, उसका निमित्त जो कोई यथा योग्य होगा उसको हम निमित्त कहेंगे। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय के लिए, कार्य एक समय के लिए तो वो भी उसमें एक समय के लिए कहेंगे। एक ही विशिष्ट घटना या पर्याय अन्य अन्य जीवों को अन्य अन्य कार्यों में निमित्त हो सकती है। ये तो शास्त्र में कथन आता है ना कि किसी मृत स्त्री को देखकर किसी के वैराग्य उत्पन्न होता है, तो किसी कामी पुरुष के काम भाव जागृत होते हैं। निमित्तानुसार कार्य होता होगा तो प्रत्येक को समान भाव उत्पन्न होने चाहिए, परंतु ऐसा तो कभी होता नहीं है। देखो टोडरमल जी ने क्या कहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कहते हैं परद्रव्य अपने भाव बिगाड़ते नहीं है, अपने भाव बिगड़ते हैं तब वे तो केवल बाह्य निमित्त है। इस तरह परद्रव्यों पर दोष लगाना क्या लिखा है? मिथ्या भाव है। हमें क्रोध आता है तो हम कहां ढूंढते हैं? ये क्या करे, हमारा पड़ोसी बहुत तकलीफ देता है इसलिए हमको बहुत गुस्सा आता है, वैसे मैं बहुत शांत हूँ, मन तो बच्चे गड़बड़ करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, कोई हमारी नहीं मानता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। क्यों? वैसे तो हम बहुत शांत है। तो हम कहाँ देखते हैं? परद्रव्यों के कारण मुझे इधर गुस्सा आया है, ऐसा ही हम मान लेते हैं। निमित्त जबरदस्ती से उपादान में कुछ नहीं करता, और निमित्तों उपादान भी निमित्तों को जबरदस्ती से जुटाता या हटाता नहीं है। दोनों का सहज ही संबंध पाए, ये सहज शब्द बारंबार आएगा। जो कोई कार्य होता है, जो कोई पर्याय होती है, द्रव्य का जो कोई परिणमन होता है, उसके जो कोई निमित्त मिलते हैं, वो सारे ही सहज ही होते हैं। देखो, हमने देखा है, सुना भी है, कितने ही लोग, कितने ही विद्वान गुरुदेव कांजी स्वामी के पास गए थे झगड़ा करने के लिए, विरोध करने के लिए। सुना है कभी नहीं? कि ये कौन बाहर का आदमी है, हम मूल दिगंबर और हमारे शास्त्र हमें पढ़ाएगा, चलो ये क्या कहते हैं, इनको विरोध करें। तो वहां जाते हैं और सुनते हैं, तो वो तो क्या, जो आप बातें सुने वो उन्होंने भी सुनी है, तो पता चला अपने ग्रंथों में क्या लिखा है। कितने ऐसे बाबू भाई पंडित है, ये अपने कैलाश चंद जी पंडित है, वो तो कहते हैं हम तो 3 महीने मुनि संघ में घूमे थे, वो कहते कैलाश चंद जी है ना, ये अपने अलीगढ़ वाले। तो फिर विरोध करने के लिए वहां पहुंच गए स्वामी जी के पास, और फिर वहां जाके सच्चा पता चल गया क्या तत्व ज्ञान है। हाँ। तो ये जो निमित्त है वो सहज मिलता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे विरोध करने के लिए जाता है, कोई अन्य किसी प्रसंगवश जाता है और उसको ये कानों में बात पड़ती है, तो अरे ऐसा स्वरूप है, ऐसा होता है ना। कोई तो ट्रेन में बैठे बैठे चर्चा करता है और ऐसे करते करते उसको इस बात का पता चलता है और वहां से रुचि जागृत होती है। तो इसको कहते सहज में मिलते हैं निमित्त। जीव के स्वभाव भाव में तो परद्रव्य का कुछ कर्तृत्व है ही नहीं। स्वभाव भाव यानी यहां मैं स्वभाव परिणमन कहना चाहती हूं। स्वभाव में तो कोई निमित्त की बात होती ही नहीं है। स्वभाव यानी गुण तो अनादि से ही है, परंतु जो स्वभाव पर्याय है वो स्वभाव पर्याय में तो परद्रव्य का कुछ करना है ही नहीं, परंतु उसके विभाव भाव में भी पर के कर्तृत्व का निषेध किया है। हमने तो सुना है मोह राग द्वेष के परिणाम कर्म के कारण होते हैं, होते कि नहीं होते? हाँ? समय सार में तो हम सुन रहे, वो तो पुद्गल का है, हमारा है ही नहीं है। यहां क्या लिखा है, विभाव भाव में भी पर के कर्तृत्व का निषेध किया है। सच्चे देवगुरु शास्त्र हमें सम्यक तो प्रदान नहीं करते, फिर भी उनकी श्रद्धा को सम्य दर्शन कहते हैं, क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप पहचाने बिना, उनके बताए हुए वस्तु स्वरूप का निर्णय किए बिना मोक्ष मार्ग की पहचान और प्रारंभ नहीं हो सकता। देखो, जिसे आत्मा की रुचि है वह ज्ञानी सत्पुरुष को सहज खोज लेता है। किसी का उपदेश सुनता है तो उसको ऐसे अंदर से लगता है, नहीं नहीं यही सच्चा उपदेश है। कितने लोग थे, हमें ऐसा ही लगता था, हम जिस किसी खोज में थे, हाँ हाँ हमें ये यहाँ प्राप्त हो रहा है। उसके उपदेश द्वारा वह ज्ञानी है, ऐसी पहचान भी उसे हो जाती है। यहीं पर मुझे सच्चा मार्ग मिलेगा, इसका उसे पक्का विश्वास होता है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति मिलती नहीं, इसलिए व्यस्त होने की, आकुलित होने की जरूरत नहीं है। स्वयं की पात्रता बढ़ती है तब उसे ज्ञानी के ज्ञानीपने की भी पहचान हो जाती है। अभी नीचे का पैरेग्राफ, निमित्तोपादान पुस्तक में डॉक्टर हुकमचंद जी भारी लिखते हैं, जब संसार सागर का किनारा निकट आता है तब सहज ही आत्मा की रुचि जागृत होती है। आपने तो सबने पुस्तक पढ़ी है ना? आत्मरुचि, भगवान आत्मा और आत्मज्ञ सत्पुरुष की शोध की ओर पुरुषार्थ को प्रेरित करती है। सत्पुरुष के समागम से आत्मरुचि को अभूतपूर्व बल प्राप्त होता है। अध्ययन मनन चिंतन की प्रक्रिया पर से विमुख हो स्वोन्मुख हो जाती है। रुचि की तीव्रता और पुरुषार्थ की प्रबलता, क्या कहा, अत्यंत तीव्र रुचि और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है, ये तत्व निर्णय करना ही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ की प्रबलता दृष्टि को स्वभावोन्मुख तो करती ही है, ज्ञान और ध्यान पर्याय को भी आत्मोन्मुख करती है। और यह निमित्त उपादान का सहज सुमेल देशना लब्धि से करण लब्धि के ओर ढलता हुआ सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त करने की सशक्त भूमिका तैयार कर देता है। यानी ये बातें सहज ही होती रहती है, रुचि भी जिसके है उसको उपदेश की भी प्राप्ति होती है, उसको ज्ञानी की भी पहचान होती है और उस मार्ग का अवलंबन करके उस पर उसका निर्णय की ओर भी बढ़ता रहता है। ये सहज प्रक्रिया होती रहती है। निमित्त उपादान का यह सहज सुमेल होने पर भी दो भिन्न द्रव्य स्वयं में परिणमन करते हैं। जीव का राग द्वेष मोह निमित्त और पुद्गल का कर्म बंध यह कार्य, इनमें जीव की पर्याय के स्वयं के षटकारक स्वतंत्र है और पुद्गल के कर्मरूप पर्याय के अपने षटकारक स्वतंत्र है। आपने सुना होगा विभाव के भी अपने स्वयं के षटकारक स्वतंत्र है। ये षटकारक क्या होता है, सुना है किसी ने? सुना है, हुआ है यहाँ विषय षटकारक का, सबका हुआ है? अच्छा है, तो हमें कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है, है ना, अपना सरल हो जाएगा विषय। तो यहाँ तो हमने ये अभी जो कोई उपादान के जो भेद प्रभेद है उसके कारणों की तो चर्चा है की है, तो हमने ये जो कारणों के भेद देखे हैं, निमित्त कारण एक, उपादान कारण में त्रिकाली उपादान कारण, क्षणिक उपादान कारण में भी दो भेद। पहला कौन सा? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से पर्याय का व्यय रूप कारण और दूसरा तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप कारण। तो उसमें जो उपचार कथन और निश्चय कथन, इसमें जो भेद है ना उसको भी देखेंगे। देखो जब हम निमित्त कारण की चर्चा करते हैं तो उसमें जो उचित निमित्त है, सच्चा निमित्त है, उसको जब हम ढूंढते हैं तो हम जो भ्रमणा से अन्य अन्य को निमित्त मानते हैं अपने कार्य का, वहां से अपनी दृष्टि छूट जाती है और फिर हम सच्चा निमित्त कौन है इसका निश्चित कर सकते हैं। तो अन्य भिन्न पदार्थों से हम वो निमित्त कारण को कारण कहते हैं। जब निमित्त से दृष्टि हटानी है तो हम कहेंगे वो तो निमित्त से कुछ नहीं होता, उसको कहेंगे ये औपचारिक व्यवहार कारण है। उसकी अपेक्षा, निमित्त कारण की अपेक्षा निश्चय कारण किसको कहेंगे? त्रिकाली उपादान को। तो त्रिकाली उपादान तो पड़ा है ना, तो त्रिकाली उपादान को हम व्यवहार कह देंगे। फिर उसकी अपेक्षा निश्चय कौन हो जाएगा? क्षणिक में भी वो पूर्ववर्ती पर्याय के व्यय को कारण कहेंगे, फिर पूर्ववर्ती व्यय को भी हम उपचार कहेंगे। तो आखिर में निश्चय कहां तक आ टिका? तत्समय की पर्याय की योग्यता, यही सच्चा कारण है। तो ये अन्य अन्य कारण को समझने की भी उसकी अपनी अपनी उपयोगिता है। इस तरह से इन सब कार्यों की जो हम इसको कहेंगे मुख्य गौण करना, एक को जो हम मुख्य करते हैं तो पहले वाला गौण होकर उसको हम व्यवहार में डाल देते हैं। इस तरह से हमें कारण में जो अपनी अनादि से विपरीतता चली आ रही है, हमारी जो भ्रमणा हो रही है, उसको टालने के लिए यहाँ जो कारणों की विशिष्ट चर्चा की है उसको समझकर हम वस्तु के स्वरूप के निर्णय तक आ पहुँचेंगे। इसी पवित्र भावना से अभी हम यहाँ रुकते हैं आज का विषय, फिर हम कल षटकारकों की चर्चा करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।